الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. इस क्लास में हम मुकदमाए तफसीर मआरिफ अल-कुरान पढ़ते हैं, जो मआरिफ अल-कुरान की जिल्द नंबर 1 में है। और इसमें पिछली क्लास में हमने इल्म तफसीर पढ़ना शुरू कर दिया था। सफ़ा नंबर 25 के ऊपर हम 50 के ऊपर हम पहुंच चुके थे। इल्म तफसीर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये लफ्ज़ तफसीर जो है वो फस्सरा युफस्सिरु तफसीरन का मस्दर है, जिसका मतलब होता है खोलना। तो फस्सरा का मतलब होगा उसने खोला, जो फस्सरू वो खोलता है या वो खोलेगा, और तफसीर का मतलब खोलना, ठीक है। और खोलना से मुराद किसी बक्से को खोलना नहीं, बल्कि किसी बात को खोलना, किसी की समझ को खोलना, किसी के मानी को खोलना। तो इल्म तफसीर नबी अलैहिस्सलाम से ही शुरू हुई कि आप सहाबा इकराम को सिर्फ कुरान मजीद के अल्फाज ही नहीं सिखाते थे, बल्कि उसके मानी और मआरिफ भी सिखाते थे और पूरी तफसीर बयान किया करते थे। यही वजह है कि सहाबा इकराम को एक एक सूरत पढ़ने में बाज़ औक़ात कई कई साल लग जाते थे। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर सहाबा इकराम खुद भी नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर के सवाल पूछा करते थे कुरान मजीद के आयात के बारे में, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है वगैरह। तो ये पूरा का पूरा एक इल्म है जिसको कि उम्मत ने जिस तरह से कुरान के अल्फाज की हिफाजत फरमाई, उसी तरीके से कुरान के मानी की भी हिफाजत फरमाई। और ये सब जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्जी से हुआ। अल्लाह ताला ने अपनी इस मर्जी को खुद कुरान मजीद के अंदर बयान भी फरमा दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, ठीक है, कि हमने ही इस जिक्र को, यानी यहाँ पे जिक्र से मुराद जो है वो कुरान मजीद है, इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने फिर हुफाज कराम के ज़रिए से अल्फाज कुरान की हिफाजत करके दिखाई और उलमाए कराम के ज़रिए से तफसीर कुरान की हिफाजत करके दिखाई। अलबत्ता जो लफ्ज़ तफसीर के इस्तेलाही मानी उलमाए कराम बयान फरमाते हैं, तो उसमें ये भी शामिल है। उलमा फरमाते हैं कि इल्म तफसीर वो इल्म है कि जिसमें अल्फाज कुरान की अदायगी के तरीक़े भी शामिल हैं। अदायगी के तरीक़े भी जो है वो इल्म तफसीर के अंदर शामिल फरमाए, उनके मफहूम। और मफहूम तो हम समझ ही रहे हैं इस बात को कि मफहूम बयान करना यही इल्म तफसीर का मौजू है, वही इसका टॉपिक है, ठीक है। तो अदायगी के तरीक़े नंबर 2, उन अल्फाज के मफहूम, ठीक है। फिर उसके बाद उनके इफरादी और तरकीबी अहकामात, यानी इंडिविजुअल जो वर्ड्स हैं कुरान मजीद के उनके बारे में, ठीक है, कि क्या क्या उसके लुगवी मानी हैं, और उलमाए लुगत और अरबी जुबान के जो, यानी जो अदब, अरबी अदब की जो किताबें हैं, ठीक है, तो उनके अंदर इस लफ्ज़ का जो है इस्तेमाल है वो किस मानी में किया गया है, ठीक है। तो ये कहा जाएगा इंडिविजुअल इफरादी मानी लफ्ज़ के, ठीक है, इट्स इनफरादी भी कहते हैं ना, लेकिन वो इफरादी मानी। और तरकीबी अहकाम, यानी तरकीबी मानी, यानी ये जो हैं ये दूसरे अल्फाज के साथ मुरक्कब हो करके, ज्वाइन हो करके, कंबाइन हो करके क्या मानी दे रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअली भी लफ्ज के क्या मानी और अहकाम हैं, और कलेक्टिवली विद इन द आयत उसके जो तरकीबी अहकाम हैं वो क्या हैं, ठीक है। इनफरादी अहकाम के लिए बाकायदा उम्मत ने एक इल्म वजा कर दिया, एक इल्म जो है वो कॉइन किया, बाकायदा उसको डिफाइन किया, उसको इल्म सर्फ कहते हैं, इल्म सर्फ, अंग्रेजी में उसको कॉन्जुगेशन भी कहते हैं, ठीक है। और जो जो तरकीबी अहकामात हैं कि एक लफ्ज दूसरे लफ्ज के साथ मिलता कैसे है, उसको कैसे जो है वो जोड़ना चाहिए, किस चीज को पहले लाना है, किस किस लफ्ज को, किस तरह के लफ्ज को बाद में लाना है, इसे पहले आएगा, फेल पहले आएगा, मफूल बाद में आएगा, ये क्या होगा, कैसे बनेगा, ये सारा का सारा जो है वो पूरा का पूरा एक इल्म इसके लिए उम्मत ने वजा कर लिया, ठीक है। उसको इल्म नहव कहते हैं, नून हा वाव, कुछ लोग उसको नहू पढ़ते हैं, हम तो उसको नहव ही पढ़ते हैं, वाव को जो है ना वो वी के साउंड के साथ पढ़ते हैं, इल्म नहव, ठीक है। ग्रामेटिकल एनालिसिस भी अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं, उसको कॉन्जुगेशन सर्फ को और नहव को ग्रामेटिकल एनालिसिस, ठीक है। तो अफराद के, सॉरी, जो कुरान मजीद के अल्फाज हैं इनको अदा कैसे करना है, इसके लिए इल्मुल कराअ, इल्मुल किराअत, और इस लफ्ज के मफहूम वगैरह क्या हैं, ठीक है, इसका मादा क्या है, इसका वजन क्या है, इसके अंदर क्या क्या इसकी खासियात हैं, इसके लिए इल्म सर्फ। और फिर अल्फाज की ज्वाइनिंग कैसे होती है, जुमला कैसे बनता है, इसके लिए इल्म नहव, ठीक है। और फिर उन मानी का तकमिला, नासिख और मनसूख, ठीक है, नासिख और मनसूख, शान नुजूल और मुबहम किस्सों की तौजीह की शक्ल में बयान किया जाता है, वजाहत की शक्ल में बयान किया जाता है, ठीक है। नासिख और मनसूख इसके अंदर कौन कौन से हैं, और शान नुजूल जो है वो क्या है, किस आयत का क्या शान नुजूल है, यानी किस पस मंजर में जो है ना ये आयत नाजिल हुई है, एक से ज्यादा भी पस मंजर हो सकते हैं और एक पस मंजर भी हो सकता है, तो उसको शान नुजूल उनको कहा जाता है, ठीक है। किस्से वगैरह जिसके तफसीलात हैं कुरान मजीद के अंदर, मतलब जिसके इजमालात हैं कुरान मजीद के अंदर, तो उसकी तफसील, उस किस्से की तफसील क्या थी, ये भी जो है वो इल्म तफसीर के अंदर शामिल होता है। तफसीर, इन्होंने सवाल किया है कि तफसीर हमें तवातुर से मिली है, तफसीर हमें कौन सी वाली है, मारुफुल कुरान तफसीर हमें तवातुर से मिली है, कौन सी वाली तफसीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं, हमें पूरी की पूरी तफसीर जो है ना वो हर चीज उसके अंदर तवातुर से नहीं मिली है, ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन सी चीज है। नो दवन द प्रोफेसर, प्रोफेसर ने कोई तफसीर रिकॉर्ड नहीं करवाई थी और ना लिखवाई थी, ठीक है ना। तो कोई आपका सवाल का मतलब, जरा सवाल ही आपका जरा सा ओके कसम के, ठीक है। नहीं, कुरान जो जो अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर में बयान फरमाई, अगर वो अहादीस मुतवातर हैं तो मुतवातर है, अगर वो अहादीस मशहूर हैं तो वो वाली तफसीर मशहूर है, अगर वो अहादीस जो है वो सिर्फ खबरें वाहिद की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो फिर वो वाली तफसीर जो कि खबरें वाहिद की हदीस की शक्ल में हम तक पहुंच गई, तो वो खबरें वाहिद कहलाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी तफसीर जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाई सहाबा को, वो सारी की सारी हदीस मुतवातिर की फॉर्म में हम तक पहुंची, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो तरकीबी हालत हो गई, तो अल्फाज के मजमूई माना यानी पूरी आयत, ये मुस्तफ़ इस्माइल साहब की किताब में इसके और तफसीरात लिखी हुई हैं, तो वहाँ से थोड़ा बहुत रेफर कर रहे हैं कि पूरी आयत अपने सियाक सबाक में क्या मानी दे रही है, इस मकसद के लिए आयत के मजामीन के लिहाज से मुख्तलिफ उलूम से मदद ली जाती है, ठीक है ना। यानी जो एक कलेक्टिव आयत के मानी बनते हैं ना, मफहूम मानी, ठीक है, पूरी पूरी आयत की क्या तफसीर बन रही है, तो इसके लिए फिर कौन से उलूम से मदद ली जाती है, इल्म क़िरात से अदायगी में मदद ली जाती है, इल्म सर्फ से जो है वो इनफरादी अल्फाज के डिटेल्स में मदद ली जाती है, इल्म नहफ के अंदर जो है वो उनके ग्रामेटिकल एनालिसिस के अंदर मदद ली जाती है, तो फिर पूरे आयात के जो मफहूम है उसमें कौन से वाले इल्म से मदद ली जाती है, ठीक है ना। तो उसमें वो फरमाते हैं कि मुख्तलिफ उलूम से मदद ली जाती है, ठीक है, मस्कूरा उलूम के अलावा बाज जो ऊपर मस्कूरा उलूम हैं वो भी इसमें अपना रोल प्ले करते हैं, और इल्म अदब से भी, इल्म बलागत से भी काम लिया जाता है, और इल्म हदीस से, और बाज औकात इल्म उसूल फिका से, उसूल फिका, हदीस मुबारका, علم بلاغت، علم ادب، ठीक है ना, और इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म क़िराअत। तो गोया के अभी जो हमने काउंट किया ना, ये सात उलूम तो यही हो गए, ठीक है, आयात के और अल्फाज के मजमूई मानी में किन उलूम से मदद ली जाती है, वो ये उलूम हो गए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आयात कुरान का पस मंजर और जो बात कुरान करीम में मुजमल है उसकी तफसीर, ठीक है ना, जो कि मुजमल यानी सुपरफिशियल तरीके से या बहुत ही हाई लेवल तरीके से बयान की गई है, तो उसको कहते हैं मुजमल तरीके से जो बातें बयान की गई हैं, तो उनकी तफसील के लिए कौन से उलूम से मदद ली जाती है, ठीक है, वो फिर ज्यादातर इल्म हदीस से मदद ली जाती है, ज्यादातर इल्म हदीस से। लेकिन ये जो मैदान है ना, ठीक है, कि आयात कुरान का पस मंजर और जो बात मुजमल है उसमें तफसील क्या है, इसके लिए इल्म हदीस से ज्यादातर मदद दी जाती है, लेकिन ये मैदान इतना वसी है कि इसमें दुनिया के हर इल्म व फन की मालूमात खप सकती हैं, यानी इस्तेमाल हो सकती हैं, खप सकती हैं का मतलब इसके अंदर अपना रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि फरमाते हैं कि बसा औकात कुरान करीम एक मुख्तसर सा जुमला इरशाद फरमाता है मगर इसमें हकायक व इसरार की, यानी जो छुपी हुई बातें हैं और जो हकीकतें इसके अंदर पोशीदा हैं, असरार रमूज, हकायक व असरार की एक गैर मुतनाही कायनात पोशीदा होती है, अनलिमिटेड यूनिवर्स इसके अंदर पोशीदा होती है। मसलन कुरान करीम का इरशाद है, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि तुम अपने वजूद के अंदर गौर नहीं करते फिर भी तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, ठीक है, फिर भी तुम जो है वो अफाला अफाला तुबसिरून, फिर भी तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देते अपने वजूद के अंदर ही, वफी अनफुसिकुम अपने अनफुस के अंदर ही, राइट, अल्लाह ताला की निशानी है, तुम्हें नजर नहीं आती, ठीक है। तो फरमाते हैं कि इस मुख्तसर से जुमले की तशरीह व तफसील में पूरा इल्म अबदान जिसको फिजियोलॉजी कहा जाता है और पूरा इल्म नफ्सियात जिसको साइकोलॉजी कहा जाता है, फिजियोलॉजी, एनाटमी, राइट, साइकोलॉजी, ये सब का सब इसके अंदर समा जाता है इस एक छोटी सी आयत के अंदर, वफी अनफुसिकुम, अल्लाह की निशानी है, अब हमारी साइके के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारी फिक्र के अंदर, ये अल्लाह ताला की निशानी है, हर इंसान मुख्तलिफ तरीके से सोचता है, राइट, मर्द मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं, उनका ब्रेन जो स्ट्रक्चर है और उनकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, औरतों की ब्रेन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, जानवर अल्लाह ताला ने बनाए उनकी ब्रेन की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है, राइट, मुख्तलिफ मिजाजों के अंदर, मुख्तलिफ माहौलों के अंदर रहने वाले मर्द, राइट, मर्द ही हैं लेकिन मुख्तलिफ माहौल में रहते हैं, उनकी सोच का अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है, मुख्तलिफ एटमोसफेयर के अंदर, क्लाइमेट के अंदर रहने वालों का अंदाज मुख्तलिफ हो जाता है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी, राइट, अनलिमिटेड बातें आप करते चले जाएं, गोया के अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड होती तो नहीं है लेकिन गोया के अनलिमिटेड है, और फिर उसके बाद आप अपने डॉक्टर हजरात से पूछें, जो मेडिकल रिसर्चर्स हैं उनसे पूछें, ह्यूमन सेल के लेवल के ऊपर जा करके जो उस कहते हैं वो जाते चले जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो हैं अंदर जाते चले जा रहे हैं, अभी भी छोटी छोटी चीजें और उससे छोटी और उससे छोटी और उससे छोटी और उससे छोटी, वायरस इज नॉट द लिटलेस्ट थिंग, वायरस से छोटी कितनी सारी चीजें अब मौजूद है, राइट, गोया के अनलिमिटेड फिजियोलॉजिकल नॉलेज जो है वो मौजूद है, तो वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरुन, ठीक है, तो इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह ताला ने इस आयत में अपनी तख्लीकी हिकमत बालगा के जिन असरार की तरफ इशारा फरमाया है वो सब पूरे हो गए, कोई भी नहीं कह सकता ये वाली बात, ठीक है, चुनाचे तफसीर के इस ज़ेरी जुज में अकल व तदब्बुर, तजुर्बात व मुशाहदात के जरिए इंतहाई मुतनव्वा मजामीन शामिल हो जाते हैं, मुख्तलिफ नौ के मजामीन शामिल हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक छोटी सी आयत है जिसका कि हमने बयान में भी कई दफा तस्करा कर दिया है, राइट, किसी को याद है वो छोटी सी आयत जिसकी तफसील में कितना कुछ, किसी को याद है, खुसूसन बच्चों से पूछ रहे हैं क्योंकि उनकी क्लास के अंदर इसके ऊपर बड़ी बात हुई थी, बड़ों के बयान में तो एक ही दफा शायद बात हुई है, कौन सी वाली आयत थी वो और वो कौन से वाला मजमून था जिससे उस आयत की कितनी सारी तफसील जो है वो बयान की जा सकती है, किसी को याद नहीं है? बच्चों आपको भी याद नहीं? आपकी तो वो साइंस क्लास के अंदर बात हुई थी उसके ऊपर, इतना तो हिंट दे दिया। सर्दी लग गया। हाँ चले माशाल्लाह, एक आए तो आपने बता दिए, लेकिन मेरे जहन में ये वाली आए तो भाई अभी थी नहीं, लेकिन आपने बता दी। ठीक है कि साइंस क्लास जो हमने शुरू करी थी ना, जरा अपने नौजवानों को, तो उसको हमने शुरू किया था, वजअलना मिनल माई कुल्ला शय इन हई अफला युमिनु, वजअलना मिनल माई कुल्ला शय इन हई अफला युमिनु, है तो पानी से हर चीज को अल्लाह ताला ने बनाया। अब इसमें कितनी तफसील है, कैसे पानी से बनाया अल्लाह ताला हर चीज, हर चीज के अंदर पानी मौजूद है, प्लैनेट अर्थ के अंदर पानी कितना सारा मौजूद है, 1/4 जो है वो पानी है, और फिर उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अंदर मोर देन 70% जो है वो पानी है, और हर दूसरी मखलूक के अंदर भी, हर मखलूक के अंदर पानी है, हत्ता कि कहीं भी लाइफ जो है वो आप ढूंढने के लिए जाएं तो साइंसदान आज के दौर में भी, साइंसदान कहते हैं वहां पे अगर पानी है तो फिर वहां पे लाइफ होगी, वरना वहां पे लाइफ नहीं होगी। और जालना मिनल माई कुल्ला शयइन हई अफला युमिनून, अभी भी तुम ईमान नहीं लेकर के आओगे कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम जो तुम्हें ये जुमला पढ़ करके बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अल्लाह ने ये जुमला नाजिल किया है मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता इसकी हकीकत का, अल्लाह को पता है इसकी हकीकत का, अल्लाह ने ये नाजिल किया है, क्या तुम उसके ऊपर इसको सुन करके भी मेरे ऊपर ईमान नहीं लेकर के आओगे कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं कोई साइंसदान नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही ये वाली बात कर सकता है कि हम मैं हर चीज को जो है वो पानी से पैदा किया, राइट? तो मैं अल्लाह का रसूल हूं, जब भी तो मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूं और अल्लाह की तरफ से बता रहा हूं, ये तो मैं कह भी नहीं रहा, क्लेम भी नहीं कर रहा कि ये मेरी तहकीक है, मैं तो बता रहा हूँ अल्लाह ने बताया ये मुझे कि मैं तुम्हें बताऊं ये बात, अभी भी तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लेकर के आओगे, अफला युमिनून का मतलब मेरे ऊपर ईमान नहीं लेकर के आओगे कि मैं अल्लाह का रसूल, ठीक है ना? जी जज़ाकुमुल्लाह। दूसरी आयत भी माशाल्लाह जैद भाई ने ही बता दी है, वल अर्ध वदअहा लिल अनाम, सूरह रहमान की इतनी तीन अल्फाज वाली, तीन तो नहीं है, पांच अल्फाज बनते हैं, छह अल्फाज बनते हैं, वल अर्ध वदअहा लिल अनाम, कि हमने जमीन को रखा, ऐसे रखा कि उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर सके, अनाम, अनाम का मतलब लाइफ, जिंदगी, ठीक है ना? अब ये जमीन की जो पोजिशनिंग है इसके अंदर, आपके सोलर सिस्टम के अंदर, गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो सोलर सिस्टम की पोजिशनिंग है, राइट? ये सारी की सारी पोजिशनिंग में आप एस्ट्रोनॉमी जो है वो आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आपको हर चीज जो है वो इसकी तरफ पॉइंट करेगी कि जमीन की पोजिशनिंग ऐसी है कि अगर ऐसी ना होती तो जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जिंदगी हो ही नहीं सकती थी जमीन के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के तीन अल्फाज के अंदर ये बयान फरमा दिया, ये हकीकत। अब खोलते चले जाएं इसको, जितना नासा के पास जाएं, सोवियत जो भी उनकी है स्पेस रिसर्च एनर्जी, वहां पे चले जाएं, जहां पे भी चले जाएं, आपको मजीद तफसीलात में, यानी गोया के वल अर्द वदअहा लिल अनाम इस आयत की तफसीर ये लामुतनाही तफसीर है, ठीक है? तो ये कितनी चीजें हमने पढ़ी, छह चीजें तफसीर का मौजू है, ठीक है ना? और भी आयात तो फिर माशाल्लाह बहुत सारी है, लेकिन हमने खास जो बड़ी तफसील के साथ बात करी थी वो है आयात के ऊपर, तो बात करी थी जिनका ताल्लुक है वो जरा के फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स, इन सारी चीजों के साथ बनता है। अच्छा अगला मौजू जो थोड़ा सा आपके सामने बयान करना था तफसीर कुरान के माखज में कंटिन्यू करने से पहले, वो ये था कि दो अल्फाज हैं उलमा ने लिखे हैं, तफसीर और तावील का लफ्ज, तफसीर और तावील, ठीक है? तो अगरचे के कुछ उलमा ने इन दोनों अल्फाज को जो है ना वो मुख्तलिफ मानी में भी इस्तेमाल किया है, ये तफसीर का कुछ डिफरेंट मानी है, तावील का कुछ डिफरेंट मानी है, लेकिन ज्यादातर मुफस्सरीन ने ना इन अल्फाज को हम मानी इस्तेमाल किया, ये तफसीर का जो मानी है वही तावील का भी मानी है, और तावील का जो मानी है वही तफसीर का ही मानी है। और हम भी जब भी बात करते हैं तावील की, तो वो भी हम एक्सप्लेनेशन के जरिए से ही उसको अंग्रेजी जुबान के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, एक्सप्लेनेशन, तावील करना, ना, फर्दर क्लेरिफाई करना, किसी बात को खोलना, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद जो तफसीर के माखज, यानी जो सोर्सेज ऑफ कुरानिक एग्जेसिस, बहुत ही मुश्किल लफ्ज है, दुकान पे नहीं चढ़ता, तो पुरानी तफसीर के जो सोर्सेज हैं, तो उनमें हमने पिछली क्लास में पहला सोर्स पढ़ा था कुरान करीम का। लेकिन आज जो है वो आपको एक और भी बात बता दें कि कुरान करीम के अंदर जो है ना, वो दो किस्म की आयात उलमा बयान फरमाते हैं, दो किस्म की आयात है। एक किस्म की आयात जो है ना, वो ऐसी हैं कि जो कि बहुत ही वाज़ह हैं और बहुत ही आसान है, ठीक है ना, यानी उनके मानी के अंदर जो है ना, वो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई उनके अंदर असरार व मारिफ नहीं है, और कानूनी मसाइल वगैरह उन आयात से नहीं निकलते हैं। तो ऐसी जो आयात होती है ना, तो उनकी तफसीर जो है उसके लिए सिर्फ अरबी लुगत काफी होती है, उन आयात के लिए जो कि बिल्कुल क्लियर हैं मानी में अपने अल्फाज के ना, तो वो मानी जो है वो आपको अरबी लुगत की किताबों से मिल जाते हैं। वो अरबी लुगत की किताबों में फिर वो भी खैर थोड़ी सी तफसीर तो उसके अंदर भी है, यानी सर्फ है, अरबी लुगत ही है ना ये, सर्फ, नहव, बलागा, इल्म अदब, राइट, और जमाने जाहिलिया की जो शायरी है, राइट, वो सबा मौलका की शायरी है, और यानी क्या क्या जो माशाल्लाह फ़नून की किताबों में पढ़ते हैं आलम को, सही, तो सबा मौलकात और क्या था वो, बहरहाल, तो वो अरबी लुगत चाहिए होती है। अब अरबी लुगत भी जो है ना, वो हमारी लेवल की अरबी लुगत नहीं कि हमने जो है वो जुमा जुमार दिन जो है वो थोड़ी सी अरबी लुगत पढ़ ली तो अब हम जो है वो उन आयात के मानी के सही तर्जुमा कर लेंगे, नहीं, बल्कि अच्छी लेवल की अरबी लुगत, ठीक है। तो वो तो जो है ना, वो अरबी लुगत से उनकी मफहूम को समझा जा सकता है जिसने अरबी लुगत को समझा हुआ है, ठीक है। दूसरी किस्म की आयात जो है ना, वो हैं जिनके लिए फिर आपको माखज की जरूरत पड़ती है, सोर्सेस की जरूरत पड़ती है कि उन सोर्सेस से फिर इनकी तफसीर की जाएगी, ठीक है। चलिए, इन्होंने यहाँ पे लिखा है तफसीर उल कुरान करीम बिल लुगत अल अरबिया, पूरे कुरान करीम के नहीं, सिर्फ वैसी आयात की, ठीक है, कि जिनके अंदर कोई इजमाल नहीं है, इबहाम नहीं है, ठीक है, कोई तशरीही दुश्वारी उसके अंदर नहीं है, कानूनी मसाइल उनके अंदर नहीं है, ठीक है, तो उनकी जो है वो अरबी लुगत की बुनियाद पर तफसीर की जा सकती है, ठीक है। दूसरी किस्म की जो आयात हैं, ये ऐसी होती हैं कि जिनमें इजमाल होता है, यानी कम तफसील नहीं होती, इजमाली बात होती है, ठीक है, बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में कोई बात कह दी, इबहाम यानी कोई मुबहम बात है, अनक्लियर बात है, या तशरीही दुश्वारी है उसके, मतलब वही इबहाम की वजह से तशरीही दुश्वारी होती है, तो उनको पूरी तरह समझने के लिए पसे मंजर को समझना जरूरी होता है, ठीक है, या उनसे जो कानूनी मसाइल अखज किए जाते हैं, या गहरे असरारो मारिफ उससे डिराइव किए जाते हैं, इस्तेमाल किया जाता है उनका, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना, इस किस्म की जो आयात हैं, इनके लिए सिर्फ जुबानदानी काफी नहीं, महज जुबानदानी काफी नहीं होती, बल्कि इसके लिए बहुत सी मालूमात की जरूरत है, ठीक है, बहुत सी मालूमात। अब वो मालूमात कहाँ से मिलती हैं? नंबर वन कुरान करीम इटसेल्फ, नंबर वन कुरान करीम, ठीक है। तो वो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था कि इनमें तफसीर का पहला माखज खुद कुरान करीम है, चुनाचे ऐसा बकसरत होता है कि किसी आयत में कोई बात मुजमल और तशरीह तलब होती है, तो खुद कुरान करीम ही की कोई दूसरी आयत इसके मफहूम को वाजे कर देती है। मसलन सूरह फातिहा की ये जो आयत है, सिराप लजीना अनअमत अलैहिम, तो इसमें कौन है ये अनअमत अलैहिम, तो इसकी तफसीर जो है वो दूसरी जगह पर कुरान मजीद से ही मिल जाती है। पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि इसकी कुछ और मिसालें भी जो है ना, वो हम आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह आगे बढ़ने से पहले। तो दूसरी मिसाल कौन सी आपके सामने रखें? बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन हाँ, एक जो है ना, वो जो कि बड़ा जमाने हाल से मुताल्लिक है, क्योंकि इस जमाने में जो है ना, वो फितनों का जमाना, ठीक है, और फितनों के अंदर जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं, कि किसी को फितने में दाखिल करने के लिए जो एंट्री पॉइंट्स مشائخ بیان کرتے ہیں وہ دو بیان کرتے ہیں، ایک موسیقی اور دوسرا بے حیائی، ٹھیک ہے نا، بے حیائی، صحیح ہے. تو موسیقی کے بارے میں قرآنی آیت کی تو ابھی ہمارے سامنے وہ تفصیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بے حیائی، بے حیائی شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ اگر آپ بتا دیں. بے حیائی جو ہے اس کا منبع کیا ہوتا ہے، کہاں سے یہ پھوٹتی ہے، واٹ از دا سورس آف اٹ، بے حیائی، ٹھیک ہے، یہ آنکھ سے پھوٹتی ہے بے حیائی. پھر تو آنکھ کے اوپر ہی پردہ کر دینا چاہیے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں. بے حیائی پھوٹتی کہاں سے ہے؟ جی بالکل صحیح فرمایا، پردہ. یہ ایکچولی عورت سے پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حیا جو ہے وہ کس کا زیور ہے؟ مرد کا زیور حیا نہیں ہے. مرد کی جو سب سے پرومیننٹ فیچر ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ حیا نہیں ہے، وہ غیرت ہے. عورت حیا کی پیکر کون ہوتی ہے؟ عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بے حیائی پھر کہاں سے نکلے گی؟ عورت سے نکلے گی. کیا مطلب؟ کہ عورت جب حیا کو سائڈ پہ رکھ دے، حیا کو ترک کر دے، تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بے حیائی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بے حیائی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب عورت وہ جو شریعت نے اس کے اوپر پردہ فرض کیا ہے اس کو ترک کرتی ہے، اس کو ابینڈن کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ مردوں کے سامنے آتی ہیں، کیونکہ پردہ کس سے ہوتا ہے؟ جانوروں سے پردہ نہیں ہوتا، پہاڑوں سے پردہ نہیں ہوتا، درختوں سے پردہ نہیں ہوتا، کس سے پردہ ہوتا ہے؟ مرد سے پردہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ پردے کو ترک کرے گی تو پھر کس کے سامنے آئے گی؟ درخت کے سامنے. بے پردگی کرے گی درخت کے سامنے آ کر کے؟ نہیں، مرد کے سامنے آئے گی تو بے پردگی کرے گی نا. تو پھر مرد کے سامنے آئے گی تو پھر آگے بات بڑھے گی، ہے نا. پھر وہ صرف بے پردگی تک نہیں رکے گی بلکہ بات سے بات بڑھے گی، اور وہی چیز پر جا کر کے بے حیائی بنے گی، بے حیائی، ٹھیک ہے نا. تو بے پردگی لیڈس ٹو بے حیائی، صحیح ہے. تو اب اس کے اوپر جو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب کے اندر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ٹھیک ہے نا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، رائٹ، کیونکہ پردے کا سب سے اصل درجہ کیا ہے؟ چار دیواری کا پردہ، گھر کے اندر رہنا، ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ اس زمانے میں جب عورتیں باہر بھی جاتی تھی نا تو وہ اس زمانے کی گاڑیوں میں بیٹھتی تھیں جو کہ کورڈ ہوتی تھیں، جیسے آج کی گاڑیوں کے جو گلاسز ہوتے ہیں نا تو ان کے اوپر آپ وہ لگا دیں، ان کو ٹنٹ کر دیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کوئی سٹیکر لگا دیں کہ اندر نظر نہ آئے. تو اس زمانے میں بھی جو پردے دار عورتیں ہوتی تھیں، شریف عورتیں ہوتی تھیں، وہ باقاعدہ پالکیوں کے اندر نکلتی تھیں، ٹھیک ہے نا، وچ ور ایکچولی چار دیواری، ٹھیک ہے نا. آج بھی جو پردے والی ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے نکلتی ہیں. تو کرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ٹھیک ہے، اور سنگھار دکھاتی نہ پھر وہ اپنی، یعنی برقع بھی پہن رہی ہیں تو ماشاءاللہ کلرفل برقع، اور جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے وہ برقع، اور برقع ماڈلنگ ہو رہی ہے آج کل، تو برقع ماڈلنگ جو ہے وہ پیک پر ہے، بڑی زبردست انڈسٹری بن چکی ہے برقعے کی. تو اس کی پھر ویڈیوز بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی آنکھوں کو لبھا دینے والے برقعے ہے نا، ایسے اڑتے ہوئے ہوا میں اڑتا جائے تیرا لال دوپٹہ ململ کا، وہ پرانا زمانہ ہو گیا، اب تو ہے ہوا میں اڑتا جائے تیرا کالا برقع، ہے زبردست قسم کا، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہے، صحیح ہے. تو بہرحال تو سنگھار دکھاتی نہ پھرو، جیسے کہ پہلی جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب رحم کا تم، کہ بعض اصول شریعہ سے ناواقف لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ یہاں خطاب ازواج مطہرات کو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ازواج مطہرات کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس والی آیت کے اندر، انہوں نے دیکھ کر نا یہ دعویٰ کر دیا کہ پردے کا یہ حکم صرف ازواج مطہرات ہی کے ساتھ مخصوص تھا، عام عورتوں کے لیے اس پر پردہ، عام عورتوں کے لیے اس پر عمل ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن قرآن کریم کا سیاق و سباق اس دعوے کی تردید کر رہا ہے. سیاق و سباق یعنی اس آیت کا جو سیاق و سباق ہے، کانٹیکس جو ہے، وہ اس دعوے کی کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے ہے اس کی تردید کر رہا ہے. اسی آیت کے آگے اور پیچھے ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے اور بھی کئی احکام مذکور ہیں. قرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یہ تو دو احکامات ہیں نا، और अजवाज मुतहरात ही को दिए जा रहे हैं, लेकिन और भी अहकामात मजकूर हैं इस आयत से पीछे भी और इस आयत से आगे भी। और वो क्या है कि बोलने में नजाकत से काम ना लो, नेक बात कहो, नमाज कायम करो, जकात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो। ठीक है, इन अहकाम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके बारे में कोई माकूल आदमी ये कह सके। माकूल, माकूल किसको कहते हैं? अकल वाला, राइट, अकलमंद आदमी। बेवकूफ आदमी तो कह सकता है, माकूल आदमी नहीं कह सकता। तो फरमाते हैं कि कोई माकूल आदमी ये कह सके कि ये सिर्फ अजवाज मुतहरात के साथ मखसूस है और दूसरी औरतों के लिए इस पर अमल जरूरी नहीं है। लिहाजा इन बहुत से अहकाम के बीच में से सिर्फ एक जुमले के बारे में ये कह देना कि काम औरतों के लिए नहीं है, दूसरी आयात कुरानी और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह के अलावा कुरान करीम के अपने सियाक व सबाक के भी बिल्कुल खिलाफ है। हकीकत यह है कि ये सारे अहकाम तमाम मुसलमान औरतों के लिए हैं। कौन कौन से अहकाम हैं? बोलने में नजाकत से काम ना लो, यानी अपनी लुचदार आवाज के साथ जो है ना वो गैर महरम मर्दों से बात ना करो। ठीक है, नेक बात कहो, क्या मतलब? सिर्फ अजवाज मुतहरात से नेक बात कहने की तवक्को है, बाकी जो औरतें हैं वो बुरी बात करेंगी, नहीं, बदी की बात करेंगी। नमाज कायम करो, क्या सिर्फ अजवाज मुतहरात के ऊपर नमाज फर्ज है या पूरी उम्मत की औरतों के ऊपर नमाज फर्ज है मर्दों के साथ, राइट? कायम करो नमाज, कायम, सॉरी, जकात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो। ठीक है, तो ये कुरान करीम का सियाक व सबाक बता रहा है कि ये जो करना फी बुयूत कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियत उला, ये सिर्फ अजवाज मुतहरात के लिए नहीं है। तो फिर क्यों अजवाज मुतहरात का नाम लेकर के बयान की गई? उसकी भी वजह बयान करते हैं कि यहाँ खास तौर से अजवाज मुतहरात को खिताब सिर्फ इसलिए किया गया है कि उन पर अहकाम शरईया की जिम्मेदारी ज्यादा है, और अगर वो इसके खिलाफ करेंगी तो उनको डबल अजाब मिलेगा, क्योंकि उनको डबल सवाब भी तो मिल रहा है ना, अपने हबीब अलैहिस्सलाम का साथ देने का, है दुनिया में पहले मुसलमान, राइट, यानी उस वक्त के पहले मुसलमान जिन्होंने सारी दुनिया से जो है वो टक्कर ली हुई है। तो ये जो बीवियां थी नबी अलैहिस्सलाम की, ये कौन थी? जिन्होंने अपने शौहर के साथ मिल करके पूरी दुनिया से टक्कर ली थी, तो इसके ऊपर उनको ज्यादा सवाब नहीं मिलना चाहिए? बाकी लोगों ने तो नबी अलैहिस्सलाम का ऐसे साथ नहीं दिया ना जैसे कि अजवाज मुतहरात ने साथ दिया, क्योंकि असल साथ देने वाली तो बीवी होती है जो घर में जो है वो उसको रिलैक्स करती है, घर में जो है उसको सुकून दे रही होती है, तब वो बाहर जाकर के जो है वो माशाल्लाह पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सदियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या काम किया था? घर में सपोर्ट किया था, नबी अलैहि सलाम इस काबिल हो गए थे, अल्लाह ताला ने भी सदिया के जरिए सपोर्ट करवाया ना दिखाने के लिए हम लोग, ठीक है ना? तो उसके ऊपर उनको सवाब भी डबल, लेकिन अगर इस नेमत की नाकदरी करेंगी कि उनको हबीब अलैहिस्सलाम की बीवी बनाया गया तो फिर अजाब भी डबल, ठीक है ना? तो इस वजह से उनको कहीं कहीं पे जो है ना वो स्पेसिफिकली एड्रेस किया गया, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये अहकामात सिर्फ उनके लिए थे और दूसरी मुसलमानों उनके लिए नहीं थे। ठीक है ना, और भी इसके अलावा मिसालें हैं जो तो आगे की आयत है सूरह अहज़ाब के अंदर, वह एदा सअलतुमुहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराइल हिजाबिन, वराइल हिजाबिन, ठीक है, और जब तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों से कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांग, ठीक है ना? तो इसके बारे में भी बाज नावाकिफ लोगों ने समझ लिया कि ये सिर्फ अजवाज मुतहरात के लिए के साथ मखसूस है, हालांकि इसी आयत का अगला जुमला वजाहत कर रहा है कि इस हुक्म का इतलाक तमाम औरतों पर होता है। इरशाद है, ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ये तरीका तुम्हारे दिलों को भी और उनके दिलों को भी ज्यादा पाकीजा रखने का जरिया होगा। सहाबा से कहा जा रहा है तुम्हारे दिलों को भी पाकीजा रखने का जरिया होगा और अजवाज मुतहरात के दिलों को भी पाकीजा रखने का जरिया होगा कि जब उनसे कोई सवाल करो, जब उनसे किसी चीज के बारे में मालूम करो तो पर्दे के पीछे से बात, ठीक है ना, मिन वराए हिजाब, हिजाब के पीछे से, जिसमें कि दूसरी तरफ का नजर नहीं आता। ठीक है, तो अब जाहिर है कि दिलों की पाकीजगी सिर्फ अजवाज मुतहरात के लिए तो मतलूब नहीं है, वो तो इतनी दुनिया की सबसे पाकीजा खवातीन, वो किसी ने भी एक बड़ा जबरदस्त जुमला भी लिखा है ना, जो अक्सर वो सोशल मीडिया पे चलता रहता है, कि पर्दे का जब हुक्म आया तो दुनिया के सबसे पाकीजा मर्दों को दुनिया की सबसे पाकीजा औरतों से पर्दा करने का हुक्म दिया गया है ना। और 21वीं सदी के अंदर कहते हैं कि जी हमें पर्दे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो पाकीजा हैं, आप उनसे ज्यादा पाकीजा हैं, कैसे हो सकता है? या नहीं हो सकता ना, ऑफकोर्स। तो ये फरमा रहे हैं कि ये जो जिन्हों की पाकीजगी जो है वो सिर्फ अज़वाज मुतहरात के लिए थोड़ी मतलूब थी, बल्कि तमाम मुसलमान औरतों के लिए मतलूब है। इसलिए आयत के हुक्म को कुछ खास औरतों में मुनहसर करना कैसे दुरुस्त हो सकता है? ठीक है, तो ये हो गई कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद से ही। ठीक है, अब जरा कम सवाल भी क्या करें, ऐसा नहीं है कि आपका सवाल जो है ना उस काबिल होता है कि उसको एड्रेस किया जाए। सुनने पे ज्यादा तवज्जो दें, ठीक है ना, सुनने पे ज्यादा तवज्जो दें, ऐसा नहीं है कि बस सवाल करना जो है ना वो हमेशा ही अच्छी बात होती है। ठीक है, दूसरे लोग भी सवाल करें, तो ये तो मैं नहीं कह रहा था कोई भी सवाल ना करें, लेकिन एक बंदा ही जो है वो हर उल्टी सीधी, कभी सीधी भी हो जाते हैं कभी उल्टे भी हो जाते हैं, तो जरा ध्यान रखें इस बात का, तरबियत के लिए ये याद दहानी बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखें इस बात को। अच्छा, दूसरा आपने क्या लिखा है कि इससे बात ये भी वाजह होती है कि हिजाब नहीं होगा तो दिलों की पाकीजगी नामुमकिन ही है, गोया के होगी नहीं। हिजाब नहीं होगा तो दिलों की पाकीजगी जो है वो नामुमकिन है या ऑलमोस्ट नामुमकिन है, कभी एज एन एक्सेप्शन जो है वो दिलों की पाकीजगी हो सकती है, लेकिन वो एक्सेप्शन ही होगा, एंड वी डोंट गो बाय एक्सेप्शन, वी गो बाय रूल्स। ठीक है, बहरहाल हदीस मुबारका जो है वो दूसरा माखज है कुरान मजीद की तफसीर का। तो उसमें पहले तो हम मारफू कुरान के मुकदमे से ही पढ़ लेते हैं। ये फरमाते हैं कि हदीस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल व अफ़आल को कहते हैं, और जैसा कि पीछे बयान किया जा चुका है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस ही इसलिए फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने कुरान करीम की सही तशरीह खोल खोल कर बयान फरमाए। ठीक है, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल और अमल दोनों से यह फरीजा बहुस्न बहुस्न व खूबी अंजाम दिया, और दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मुबारक जिंदगी कुरान ही की अमली तफसीर है। इसलिए मुफस्सरीन कराम ने कुरान करीम को समझने के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जोर हदीस मुबारक पर दिया है, और अहदीस की रोशनी में किताबुल्लाह के मानी मुतय्यन किए हैं। ठीक है, जैसे पीछे भी हमने पढ़ा कि जो सबसे ज्यादा जो है ना वो दारोमदार वो अहादीस मुबारक के ऊपर होता है, क्योंकि साहिब कुरान जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस कुरान को लेकर के आए। और पीछे पिछली क्लास के अंदर ये में भी ये बात हो चुकी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी अलैहिस्सलाम के बिरसत के मकासिद जो चार मुकामात के ऊपर कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाए, तो उनमें यतलू अलैहिम आयात ही पर बात खत्म नहीं कर दी कि बस आप तिलावत करें और बस मानी जो है वो लोग खुद समझ में आ जाएंगे, लोगों के खुद जो है वो तहकीक कर लेंगे मानी के, आप तिलावत करके गोया के पोस्टमैन की तरह आप मैसेज पहुंचा दें लोगों तक, नहीं बल्कि वो युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुम किताबा वल हिकमता, आपने ये तीन काम भी करने हैं। ठीक है, तो वो तीन काम नबी अलैहिस्सलाम कैसे करते थे, राइट, इसी तरीके से ना कि वो समझाते थे, सिखाते थे, मानी बताते थे, खाली तिलावत करके अलग नहीं हो जाते थे। तो बहरहाल चुनाचे आप ने अपने कौल और अमल दोनों से ये फरीजा बहुसन बखूबी अंजाम दिया, और दर हकीकत आप की पूरी मुबारक जिंदगी कुरान ही की अमली तफसीर है, क्योंकि तो आयशा सिद्दीका रहा की मशहूर हदीस भी है कि काना अमलुल कुरान, या क्या है, की जिंदगी जो है वही कुरान थी। इसलिए मुफस्सरीन कराम ने कुरान करीम को समझने के लिए दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जोर हदीस पर दिया है, और हदीस की रोशनी में किताबुल्लाह के मानी मुतय्यन किए हैं। अलबत्ता चूंकि हदीस में सही, ज़ईफ और मौजू हर तरह की रिवायात मौजूद हैं, यानी जो कलेक्शन ऑफ हदीस है, हदीस लिटरेचर जिसको कहेंगे, जखीरा हदीस, तो उसमें फिर सही हदीसें भी हैं, ज़ईफ भी हैं और मौजू भी। सही की भी बहुत सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, یعنی متواتر، مشہور، خبر واحد، یہ صحیح کی کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ضعیف جو ہے وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، اور پھر جو ہے موضوع جو ہے وہ تو گھڑی جھوٹی. تو ہر طرح کی روایت چونکہ موجود ہے، اس لیے محقق مفسرین اس وقت تک کسی روایت کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے جب تک وہ تنقید روایات کے اصولوں پر پوری نہ اترتی ہو. روایت سے مراد حدیث سے مراد جو راویوں کے ذریعے روایت ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، نیریشنز نیریٹ ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں، انہوں نے ان سے نیریٹ کیا، انہوں نے اس کو نیریٹ کیا، انہوں نے اسے نیریٹ کیا. تو حدیث لٹریچر کے اوپر زبردست قسم کی جو ہے نا وہ تنقید علماء نے کی ہے کہ یہ اس کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے کہ کون سی صحیح ہے، کون سی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور کون سی ہیں ہی نہیں حدیث بلکہ وہ گھڑی ہوئی ہیں. لہٰذا جو روایت جہاں نظر آ جائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں. کیونکہ بھئی کیوں درست نہیں ہے؟ حدیث ہے آخر کو، کیوں درست نہیں ہے پھر؟ کیونکہ وہ روایت ضعیف بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا خالی ضعیف حدیث اگر ہے، موضوع تو نہیں ہے نا، ضعیف ہے نا، تو ضعیف حدیث کو آپ ایسے تو نہیں اٹھا کر کے سائڈ پہ لگا سکتے. آخر کو وہ حدیث ہے، ضعیف ہے، اگرچہ کہ صحیح نہیں ہے لیکن ضعیف ہے. موضوع حدیث کو تو آپ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیں گے، ضعیف حدیث کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو پھر ضعیف حدیث میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے دوسری مضبوط روایتوں کے وہ خلاف بھی ہو سکتی. اسی موضوع کے اوپر صحیح روایت اگر موجود ہے تو پھر تو ضعیف کو آپ ترجیح نہیں دے سکتے نا، تفسیر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے نا. در حقیقت یہ معاملہ بڑا نازک ہے، اور اس میں قدم رکھنا انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی ہیں. کیونکہ حدیث کے جو علوم ہے نا یہ بہت زیادہ تفصیلی علوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی وجہ سے ہمارے جو مدارس کے اندر حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کمپلیٹ کور ٹو کور، بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ترمذی، نسائی، اور ابو داؤد، اور موطا امام مالک، اور موطا امام محمد، اور دارمی شریف، اور یہ سب 8ویں سال میں پڑھائی جاتی ہیں. 7 سال تک بیس بنائی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ آپ بیس کے بغیر جو ہے نا وہ حدیثوں کی جو آپس کے یعنی جو لیولز ہیں اور جو کیٹیگری وہ ہیں، اختلافات ہیں اور موضوعات ہیں ساری، ان سب کو آپ نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت ہی تفصیلی موضوع ہے. اور حدیثیں جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر، قرآن مجید کی آیات تو بہت مختصر ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیثیں ایسے نہیں ہیں. تو یہ دوسرا ماخذ ہے جس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا. ٹائم تو مکمل ہو گیا ہے، بس ایک چیز بتا کر کے کہ اگلی کلاس کے اندر ہم نے اس دوسرے ماخذ کے اوپر کچھ اور تفصیلی بات کرنی ہے. شاید اگر کچھ ایسے نقطے ملے تو آپ کو اگلی کلاس میں پہلے وہ بیان کر کے پھر اس کے بعد تیسرے ماخذ کے اوپر جائیں گے. اچھا آپ کو ڈانٹ تو پڑ گئی تھی، تو پھر اس کے بعد ہم آپ کے سوال پڑھ بھی لیتے ہیں. اچھا انہوں نے سوال لکھا ہے کہ لکھا تھا کہ مے بی اف ازواج مطہرات آر ایڈریس اٹ مینس دیٹ دا ٹاپک از ریلیٹڈ ٹو ویمن مور دین مین. ظاہر سی بات ہے جی، بالکل ازواج مطہرات کو ایڈریس کیا جا رہا ہے تو وہاں پر ریلیٹڈ مور ٹو ویمن ہے، ٹھیک ہے نا؟ دین مین. پردہ از اونلی فار ویمن ناٹ مین، لیکن نماز، زکوٰۃ، اچھی بات کہنا، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت کرنا، یہ مین اینڈ ویمن دونوں کے اوپر اپلائی ہوتا ہے، اور ایکولی ہی اپلائی ہوتا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے؟ بلکہ نماز قائم کرنے کا تو عورتوں کے اوپر ذرا کم اپلائی ہوتا ہے کیونکہ ان کو چھٹی بھی مل رہی ہوتی ہے، مردوں کے اوپر تو 100% اپلائی ہوتا ہے، یعنی 365 days a year اپلائی ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال جانے بہتر ہے، یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.